ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन के तैयारी के बारे में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी बीच हुई विचार विमर्श। निर्वाचन तैयारी तीव्रता के साथ हो रही है, आयोग द्वारा दी गई जानकारी। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए विश्व के सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकों के सूची में 31 नेपाली समावेश। सिंधुली की दुधौली नगर पालिका स्थित मदन भंडारी राजमार्ग पर सवारी दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की मौत, चार गंभीर घायल। और जर्जिया में टर्की के सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के साथ आगामी निर्वाचन के तैयारी के विषय पर आज विचार विमर्श किया है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंह दरबार में हुए विचार विमर्श में आयोग ने निर्वाचन के तैयारी अंतर्गत के 60% से अधिक काम संपन्न कर चुकी है। यह जानकारी आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने दी। आयोग में नए दल दर्ता और मतदाता नामावली में समावेश होने का क्रम में भी उत्साहजनक होने की जानकारी कराते हुए कहा कि मूल्यांकन अनुसार आयोग ने तय की गई मिति पर ही निर्वाचन कराने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आयोग के ऑनलाइन प्रणाली में मतदाता नामावली दर्ता का भीड़ व्यवस्थापन करने के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 2 सत्र में काम कर रहे हैं। जनशक्ति भी बढ़ाया गया है और प्राविधिक समस्या का भी तत्काल समाधान का व्यवस्था मिलाया गया है। प्रधानमंत्री कार्की के निर्देश पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय द्वारा भेजे गए 3 सूत्रीय पत्र के संबोधन पर हुए काम के प्रगति के बारे में भी आयोग ने जानकारी कराई थी। इसी तरह राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग के महानिदेशक नवराज घिमरे ने कहा कि राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण के लिए संकलन किए गए जैविक तथ्यांक निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। बता दें कि अभी तक 1,83,77,000 मतदाता आयोग के तथ्यांक में अभिलिखित है और पिछले निर्वाचन घोषणा के बाद मात्र 2,09,552 मतदाता और बढ़ा है, यह जानकारी आयोग ने दी है। अवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार गठन किए को लेकर 7 दलों ने मध्य भवन अगाड़ी कल से धरना शुरू किया है। प्रदेश सरकार के प्रशासनिक भवन मधेश भवन अगाड़ी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लगायत के 7 दलों ने शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम शुरू किया है। कल मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के पदभार ग्रहण करने के दौरान मधेश भवन अगाड़ी 7 दल और प्रहरी के बीच में झड़प होने से 13 नेता तथा कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इसी बीच मुख्यमंत्री यादव विरुद्ध कृष्ण प्रसाद यादव सहित मध्य प्रदेश के 74 सांसदों ने सर्वोच्च अदालत में दर्ज किए गए रीट निवेदन का आज प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज यादव के नियुक्ति के वैधता के बारे में कारण दिखाओ आदेश जारी कर लिखित जवाब मांग किया है। इसी तरह कल मंगलवार सर्वोच्च अदालत ने रक्की प्रसाद शाह लगायत के कानून व्यवसायियों ने दर्ज किए रीट निवेदन पर दीर्घकालीन रूप में असर पड़ने के हिसाब से नीतिगत निर्णय नहीं करने के लिए प्रदेश सरकार के नाम पर अंतरिम आदेश जारी हो चुकी है। विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिकों के सूची में 31 नेपाल में कार्यरत वैज्ञानिकों का नाम समावेश किया गया है। नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट के सचिव रविन्द्र ढकाल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एल्सेवियर के साथ के सहकार्य पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए वार्षिक ग्लोबल यांकिंग में 31 नेपाली वैज्ञानिकों को समावेश किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सार्वजनिक किए गए सूची अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 7 तथा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउंसिल, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान और अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड़ के 2-2 वैज्ञानिकों को समावेश किया गया है। सचिव ढकाल के मुताबिक नेपाली अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधान, आविष्कार और दीर्घपन के माध्यम से विश्वव्यापी प्रभाव छोड़ा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि ग्लोबल आईसीटी लीडरशिप फोरम नेपाल के लिए उपलब्धिमूलक है। आज दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित 11वां ग्लोबल आईसीटी लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नेपाल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फोरम उपलब्धिमूलक और फलदायी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। विभिन्न सात बुँदे सहमति सहित मातृभूमि जागरण अभियान नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी में समाहित हुआ है। आज काठमाण्डू के राष्ट्रीय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में भीम रावल नेतृत्व के मातृभूमि जागरण अभियान सात सूत्रीय सहमति सहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा में समाहित होने की घोषणा की है। सहमति पत्र में नेपाल और नेपाली जनता के सर्वोपरि हित, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता, स्वाभिमान तथा आत्मनिर्णय के अधिकार को अक्षुण्ण रखते हुए बाह्य हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त राजनीति, राष्ट्रीय अर्थतंत्र एवं संस्कृति के रास्ते पर अग्रसर होने की बात उल्लेखित है। सहमति पत्र पर नेकपा के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड, सह संयोजक माधव कुमार नेपाल और अभियान के भीम रावल ने हस्ताक्षर किए। मौके पर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि किसी भी तरह के आग्रह और पूर्वाग्रह के बिना पार्टी को क्रांतिकारी और जनता का भरोसा योग्य बनाया जाएगा। पार्टी के सह संयोजक माधव कुमार नेपाल ने राजनीति प्रति दिख रहे जनता के वितृष्णा के बारे में समीक्षा करने पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी और नेता तथा कार्यकर्ताओं के अंदर के विकृति और विसंगति को सुधार करके आगे बढ़ना होगा। सिंधुली की दुधौली नगरपालिका वार्ड नंबर 4 लक्ष्मीपुर स्थित मदन भंडारी राजमार्ग में सवारी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग वहीं पर घायल हो गए हैं। विमान से दुधौली की ओर जा रही ट्रक और विपरीत दिशा की ओर से आ रही दो मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकराने से हुए हादसे में दुधौली नगरपालिका वार्ड नंबर 11 टाड़ी के 34 वर्षीय रामकुमार कुंवर और दुधौली नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के 25 वर्षीय फूलबाबू धामी की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली ने दी। विश्व निमोनिया दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम कर मनाया गया है। बच्चों को बचाएं, सशक्त स्वास्थ्य प्रणाली, रोकथाम और इलाज में लगानी करें के नारे के साथ आज देश के विभिन्न अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में चेतनामूलक कार्यक्रम का आयोजन कर दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान पर मनाए जाने वाले इस दिवस के अवसर पर नेपाल सरकार ने भी रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवा और सबल स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण पर जोर दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसका एक कार्गो विमान अजरबैजान और जर्जिया की सीमा के करीब क्रैश हो गया है। इस विमान में कम 20 लोग सवार थे। अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप थ्यप आर्दोआन ने हादसे में शहीदों का जिक्र करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है। घटनास्थल पर सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह C-130 कार्गो विमान अजरबैजान से तुर्की की ओर जा रहा था। बीबीसी तुर्की सेवा के मुताबिक जर्जिया की एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि विमान बिना कोई सिग्नल भेजे रडार से गायब हो गया है। जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि विमान शिंगनागी के पास अजरबैजान के से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ है। C-130 कार्गो विमान अमेरिका में बना विमान है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर की वायु सेनाएं करती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन के तैयारी के बारे में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी बीच हुई विचार विमर्श। निर्वाचन तैयारी तीव्रता के साथ हो रही है, आयोग द्वारा दी गई जानकारी। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए विश्व के सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकों की सूची में 31 नेपाली समावेश। सिंधुली की दुधौली नगर पालिका स्थित मदन भंडारी राजमार्ग पर सवारी दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर घायल। और जॉर्जिया में टर्की के सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।